مش انت. ایک ندی ایک بار اپنی یاترا پر جا رہی تھی. اس ندی کا لکش تھا جیسے ہر ندی کا ہوتا ہے, ساگر سے ملنا. تو وہ ندی بھی ساگر سے ملنے کے لیے تیز دوڑ رہی تھی. اس کے من میں یہ ابھیلاشا تھی کہ کب جا کر ساگر سے مل جاؤں, کب میرا ملن اس وراٹ سے ہو جائے. پرنتو جب اس طرح دوڑ رہی تھی تو بیچ میں ریگستان آ گیا, مرستھل اور ندی اس ریگستان کے اوپر سے دوڑنے لگی. پرنتو اس نے دیکھا کہ ریت تو ندی کو پیتے جا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ میرا پانی رک رہا ہے. وہ بے چین ہوئی, گھبرائی, کیا کیا جائے, کیوں میں رک گئی, اور زور سے اس نے چلا کر پوچھا, ہے ریت کیا میں ساگر تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گی, میرا جل تو تو پیتے جا رہا ہے, تجھ میں سما رہا ہے. تو اس ریت نے کہا, ندی یدی تجھے ساگر سے ملنا ہے تو وہ دیکھ اوپر, ہواؤں کے بھونڈر اٹھ رہے ہیں, جا اور ان میں سوار ہو جا تو تو ساگر تک پہنچ جائے گی. ندی نے کہا, میں ندی ہوں, ہواؤں کو اپنا واہن کیسے بناؤں. ریت نے کہا, ایواپوریٹ, باشپیبھوت ہو جاؤ. ہواؤں پر سوار ہو جاؤ, اڑو اور ساگر میں سما جاؤ. پرنتو ندی نے کہا, میں کیسے ہوا بن جاؤں, میں کیسے ہوا پر سوار ہو جاؤں, میں تو ندی ہوں, مجھے ندی بن کر ہی ساگر میں سمانا ہے. ریت نے کہا, یدی تجھے ساگر میں ملنا ہے تو مٹنا ہوگا, یدی تجھے ساگر میں ملنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, مٹنا ہوگا, نہیں تو تو ہزاروں سال تک ایسے ہی بہتی جا. پرنتو ریگستان برہد ہے, بہت وشال ہے, دلدل بن جائے گی, پرنتو ساگر سے نہ مل پائے گی, بھٹک جائے گی, سوکھ جائے گی. یہ جو میں ہوں ریت, اتنی وشال, اس میں تو سما جائے گی. اور تیری یہ ابھپسا, تیری یہ اچھا, تیری یہ مہتوکانکشا کبھی پوری نہیں ہوگی. اس کے لیے تجھے یدی ساگر سے ملنا ہے تو کیا ہو جا, مٹ جا, اپنے استتو کو مٹا دے, اپنے میں کو مٹا دے, راضی ہو جا, کیونکہ میں نے آج تک کئی ندیوں کو اسی طرح بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے ان ندیوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ بادلوں پر, ہوا پر سوار ہو گئی. وہ ساری ندیاں پھر جا کر پانی بنی اور ساگر سے مل گئی. تو تم بھی کیا ہو جاؤ, مٹ جاؤ. یدی ساگر سے ملنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, مٹنا پڑے گا. کس ساگر سے؟ सागर से। तो अगर ज्ञान सागर से मिलन मनाना है, अगर वो परमात्म मिलन का अनुभव कराना है, यदि उस अतिंद्रिय सुख में भी डूबना है तो किसे मिटाना पड़ेगा? मैं को मिटाना पड़ेगा। लोहे सोने की जंजीरें हैं, बाबा ने कहा, मैं और मेरा। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, परंतु सोने की जंजीरों को आभूषणों की तरह सजा कर रखा है, हीरों से जड़ा है। तलवार निकाली और सोने की लोहे की जंजीर को तो तोड़ दिया, परंतु जिसे आभूषण बनाकर रखा है, तलवार वहां नहीं चलती, हाथ कांपते हैं, तलवार वैराग रुकता है, क्योंकि आभूषण बहुत ही सुंदर है। किसके आभूषण? मैं के और मेरे के। तो आज हम संडे की मुरली रिवाइज करेंगे। 3 तारीख से लेके तो 13 तारीख तक चली हुई ये मुरलियां है, अप्रैल मास 1982। त्याग का साप्ताहिक कोर्स, वीकली कोर्स ऑफ रिनंसिएशन, फर्स्ट चैप्टर देहभान का त्याग, पहली मुरली 3 तारीख की। नेक्स्ट चैप्टर कर्मेंद्रियों के आकर्षण का त्याग, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने पर मुरली थी। तीसरी मुरली थी लौकिक और अलौकिक संबंधों का त्याग, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर पिछले संडे का व्यर्थ कर्म, साधारण कर्म, विकर्म, विकर्म संन्यास, विकर्माजीत चौथा। पांचवा आज त्याग, छठवा महात्याग और सातवा सर्वंश त्याग। सर्वंश त्याग अर्थात त्याग का भी त्याग, सर्वंश त्याग अर्थात त्याग का जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसका भी त्याग। सर्वंश त्याग अर्थात 3 प्रकार की प्रवृत्ति बाबा ने बताई है। कौन कौन सी प्रवृत्ति है? 3 types of household। कौन कौन सी? मुरली सभी ने सुनी है, पढ़ी है। सबसे पहला लौकिक प्रवृत्ति, उसमें कर्म, कार्य और संबंध। दूसरी प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति। तीसरी प्रवृत्ति सेवा की प्रवृत्ति। सर्वंश त्यागी अर्थात जो तीनों ही प्रवृत्ति से परे है, त्यागी अर्थात जो 3 पहले नंबर की प्रवृत्ति है, उसमें से तीनों ने ही उसका त्याग किया है, लौकिक वाली। महात्यागी है, उसने क्या किया? पहले का त्याग किया, दूसरे का त्याग किया, परंतु तीसरे में फंस गए, उल्टा नशा, सेवा के विस्तार में अटक गए। और सर्वंश त्यागी अर्थात तीनों ही प्रवृत्ति से परे, यह सर्वंश त्यागी है। तो आज हम त्याग की चर्चा करेंगे। जो 3 त्याग बाबा ने गिनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तीसरा तो सबसे अधिक सूक्ष्म है, मैं और मेरा का त्याग। तो चर्चा हम स्थूल से चालू करेंगे और सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। 3 त्याग जो बाबा ने बताए उसकी चर्चा लास्ट में, उससे पहले 7 दूसरे प्रकार के त्याग। सबसे पहला ये त्याग उनको करने हैं जिन्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का लक्ष्य है, जिनको महान योगी और महान तपस्वी बनना है। सबसे पहला त्याग। हृदय विदीर्ण तो नहीं होगा ना, अमृत वेले के बाद सोना, सबसे पहला त्याग कौन सा? पोस्ट अमृत वेला स्लीप, बहुत अच्छी नींद आती है, एक घंटे में 6 घंटे का भी अनुभव होता है कईयों को, फ्रेश हो जाते एकदम। परंतु अमृत वेला भगवान से मिलन मनाया, आत्मा को शक्तियों से भरा, परमात्मा प्रेम से भरा, उमंग से भरा, उत्साह से भरा, आत्मा जागृत हुई है स्वमान से और फिर जाकर सो गई। फिर से एक नया नींद की नई साइकिल, नया स्वप्न, पता नहीं कौन सा स्वप्न आ जाए एक घंटे में। वो समय है श्रेष्ठ चिंतन का, वो समय है मनन का, वो समय है अध्ययन का, वो समय है स्वाध्याय का, वो समय है स्वयं को देखने का, वो स्वयं है समय है आत्मनिरीक्षण का, वो समय है प्लानिंग का, सारे दिनचर्या की प्लानिंग करने का, सोने का नहीं। उठना, जागृत करना स्वयं को, भगवान से मिलन मनाना और फिर सो जाना, क्या ये बुद्धिमानी है? और कारण हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने कि एक क्लास उस पर हो सकती है, और हर एक कारण एक से बढ़कर एक है। जब संसार सोया पड़ा है, संसार में विकारी वाइब्रेशंस नहीं है, कीचक की दुनिया है, गंदे विचार वालों की दुनिया है, शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम बोट में बैठ गए हो, तुम्हारा लंगर उठ गया है, तुम सीधे चले जाएंगे ऊपर अपने घर। संसार की विकारी तमो प्रधान पतित आत्माओं के विकारी वाइब्रेशन उस समय शांत है, वही समय है श्रेष्ठ चिंतन करने का, वही समय है मुरली का अध्ययन करने का। यदि ये समय हमारा और कार्यों में जा रहा है, व्यर्थ के चिंतन में, संगम युग पर यह मूर्खता होगी। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर आज की साकार मुरली। एक जगह महावाक्य आया है बाबा का, तो कितना मददगार बनना चाहिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाना यही संसार के लिए सबसे बड़ी मदद है, स्वयं के संकल्पों को महान कर देना यही संसार के लिए सबसे बड़ी मदद है, स्वयं के संकल्पों को श्रेष्ठ और कम कर देना, तब हम संसार की सबसे अधिक मदद करते हैं। तो सबसे पहला यह त्याग, दूसरा इन 7 प्रकार के त्याग की चर्चा हमने किसी और क्लास में की है, इसके लिए ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल वर्णन करके थोड़ा सा स्पर्श करके छोड़ देंगे। दूसरा भोजन से संबंधित, वो हर एक समझ ले, वो सभी भोजन जो दिमाग को और पेट को भारी करता है, राजसी है और तामसी है। हमें सात्विक भोजन करना है, वह भोजन जो करने के बाद नींद ना आए, वह करने के बाद दिमाग पर और पेट पर ज्यादा प्रेशर ना हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य जितना खाता है 50% खुद के लिए और 50% डॉक्टर्स के लिए, 50% से अपनी पालना करता है और 50% डॉक्टरों की पालना करता है। कैसे? बहुत चिंता है संसार के डॉक्टरों की हमें, उनके पेट की, कहीं भूखे ना मर जाए। उनका भी तो पालन पेट का होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, तो उतना ही खाए जिससे हमारा पेट भरे, डॉक्टरों का नहीं। ठीक है, इसका विस्तार बहुत है परंतु इसको यहीं छोड़ रहे हैं। सात्विक आहार, वह आहार जो खाकर हल्कापन हो, वह आहार जो खाकर शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो, वह आहार जो अशरीरी बनने में मदद हो, जिस आहार से, वो सभी आहार जिसमें तेल तैर रहा है, वो सभी आहार जिसमें मिर्च है और मसाले हैं और नमक की अधिक मात्रा है, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हैं, जिह्वा को चलायमान करने वाले हैं, स्वाद उत्पन्न करने वाले हैं और घसीटने वाले हैं नीचे देह के भोग की तरफ, वो सभी आहार राजसी है। जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, जो फिर खाने की इच्छा हो और वो न मिले तो बेचैनी हो, संसार में द्वापर से वह योगी थे जो जंगलों में रहते थे, संसार का जिन्होंने त्याग किया, प्रवृत्ति से दूर रहते थे, प्रपंच से दूर रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, फिर भी उनके लिए विकारों को त्यागना मुश्किल था। हम कहां हैं और क्या खा रहे हैं? तीसरा, पीना, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्राह्मणों को भी बहुत आदत है, लिम्का, फैंटा, कोको कोला और क्या क्या है, रूह अफ़ज़ा, रसना, मिरिंदा, थम्सअप, चाय, अत्याधिक चाय, कॉफी, बार बार चाय चाहिए नहीं तो नींद आती है। योग में योग कर्मेंद्रिय जीव बनने के लिए या क्या करने के लिए? आज का है राजयोग और ज्ञान की बरसात है उन पर जो बाप के साथ है। बहुत सारी स्टडीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी है 1600 लोगों के ऊपर की हुई, 16,000 सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स को अस्थमा के साथ जोड़ा है, हाई चांसेस। अमेरिकन मेडिकल काउंसिल, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल काउंसिल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी कभी अभी अभी, सॉफ्ट ड्रिंक को हार्ट अटैक के साथ जोड़ा है, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ जोड़ा है। जो लोग 500 ml से ज्यादा और बीच बीच में पीते रहते हैं और ज्यादा पीते रहते हैं, हमने ब्राह्मणों को भी पीते देखा है, ये कहकर कि ये मशीन मेड है। क्या मशीन अपने आप काम करती है? चॉकलेट, आइसक्रीम अपने आप बन जाते हैं मशीन से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के? क्या हम पी रहे हैं? किस भाव से पी रहे हैं? चौथा, फैशन, इसकी चर्चा हमने कभी की थी, इसके लिए आज नहीं कहेंगे, एक ही बात बताएंगे। एक बार एक सिनेमा हॉल में एक व्यक्ति जाता है सिनेमा देखने, सिनेमा चालू रहता है, एक्टर की एंट्री होती है, तो बाजू बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, इतना खुश हो जाता है वो देखकर, जैसे वो हीरो एंट्री कर रहा है। तो ये व्यक्ति उसकी एक्साइटमेंट देखकर पूछता है, क्या ये आपका बेटा है? वो कहता है, नहीं, ये मेरी बेटी है। वो पूछता है, क्या आप इसके पिता हो? वो कहता है, नहीं, मैं इसकी मां हूं। रूप और रंग को ही क्या कर देता है, फैशन बदल देता है। कौन कौन है समझ नहीं आता है। पवित्रता हमारा श्रृंगार है, सादगी हमारा श्रृंगार है, श्वेत वस्त्र हमारा श्रृंगार है। इस श्वेत परिधान में अनंत शक्तियां समाई है। सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि, साकार महावाक्य है बाबा के। अगला, डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन। डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब प्रयोग करना है जब तक उसका संबंध ज्ञान, योग और सेवा से है। बस ये सारी चीजों का प्रयोग किस लिए करना है? ज्ञान, योग और सेवा। इसके अतिरिक्त यदि उसका प्रयोग हो रहा है तो वो श्रीमत का उल्लंघन है। अगला, वस्तुएं, संसार की वस्तुएं संग्रह करना, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स। आज की मुरली है साकार मुरली। सोचते हैं बहुत धन कमाएंगे पुत्र पोत्रों के लिए। मनुष्य की यह कामना या ऐसी कामना कभी भी पूरी नहीं होगी। साकार महावाक्य आज सुबह की मुरली। एक बॉम गिरेगा, निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। जो कुछ तुम्हारे पास है सब मिट्टी में मिल जाएगा। ज्ञान सभी के पास है, रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। एक चम्मच भी यदि कम है तो बेचैनी है। संग्रह, नई नई चीजों का संग्रह, वस्तु है। अगला, कितने हुए? छह। एक सूक्ष्म चीज का त्याग करना है, वो है गॉसिप्स, बैठकर परचिंतन की बातें करना, किसने क्या किया उसकी बातें करना। तो ये सात त्याग करना है। मुख्य चर्चा अभी चालू करेंगे। ये तो ऊपर ऊपर, तो बाबा ने किन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं? मुरली का सर्वप्रथम महावाक्य इतना सूक्ष्म है और इतना गुह्य है। बाप दादा सर्वंश ब्राह्मण बच्चों में से सर्वंश त्यागी, सर्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मणों में से किसको देख रहे हैं? सर्वत्यागी बच्चों को, और मुरली में चर्चा है त्यागी और महात्यागी की। सर्व त्यागी की चर्चा कभी और करेंगे कहा है, और मुरली की शुरुआत कहाँ से है, बाप दादा ब्राह्मणों में से सर्व त्यागी बच्चों को देख रहे, शायद उसे दिखे ही नहीं अंत में, शायद वो ढूंढता तो नहीं रह गया। एक है त्यागी, दूसरे है महात्यागी, तीसरे है सर्वत्यागी, रिनंसिएट, ग्रेट रिनंसिएट, कंप्लीट रिनंसिएट। तो तीन प्रकार की प्रवृत्तियां गिनाई है बाबा ने। सबसे पहली प्रवृत्ति है लौकिक प्रवृत्ति, उसमें दो बातें, कार्य और संबंध। लौकिक प्रवृत्ति अर्थात किसका त्याग, कार्य और संबंध। सबसे पहले लौकिक संबंध, मुरलियों में आता है तोड़ निभानी है, परंतु मोह इतना ज्यादा है कि अपने मोह को हम तोड़ निभाने की संज्ञा तो नहीं दे रहे। है मोह, है आसक्ति, है अटैचमेंट, और उसको हमने ढक रखा है एक शब्द से, कौन से शब्द से, तोड़ निभा रहे हैं, अपनी अटैचमेंट की पूर्ति कर रहे हैं, परंतु नाम क्या दिया है हमने, हम तोड़ निभा रहे हैं। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली श्रीमत है। और 80 साल में जो भी मुरलिया है सब इस एक महावाक्य का विस्तार है। केवल देह सहित क्या कर, देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझ एक को याद कर, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई संसार नहीं। ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। बाइबल में वाक्य आता है, जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक भाई और अपनी लौकिक बहन को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। ही हु गिव्स टू गॉड सेकेंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वह व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन में दो नंबर के स्थान पर रखता है वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता। लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक प्रपंच, लौकिक संबंध, ऐसा ना हो कि हम तोड़ निभा रहे कहते कहते ही उसमें फंसे रहे, और वही एक बाधा है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में। दूसरा है कार्य, लौकिक कार्य, इतना डूबे हुए हैं लौकिक कार्यों में कि पुरुषार्थ कब करेंगे। ट्रैवलिंग में कितना समय जा रहा है, और 10 घंटे कार्य के, 2 घंटा ट्रैवलिंग, 4 घंटा ट्रैवलिंग, महान पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ समय की भी आवश्यकता है। चिंतन कब करेंगे, मनन कब करेंगे, अध्ययन कब करेंगे, योग की प्लानिंग कब करेंगे, पुरुषार्थ की प्लानिंग कब करेंगे, अगर सारा ही समय कार्य में डूबे हुए हैं, और उसका कारण यदि लोभ है तो वो विकार का अंश है। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को समय देना होगा पुरुषार्थ के लिए, अपने लोभ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा तो ही महान पुरुषार्थ हो सकता है। तो पहली प्रवृत्ति है लौकिक कार्य और लौकिक संबंध। अब दूसरी प्रवृत्ति वो कौन सी? देह की प्रवृत्ति। जो त्यागी आत्माएं हैं उन्होंने ये तो समझ लिया है कि ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए, वो जो जीवन है उस जीवन में जो कुछ है उससे ये जीवन श्रेष्ठ है, महान है, स्नेही बन गए, सहयोगी बन गए, परंतु चलने की कहीं कहीं हिम्मत नहीं है, परंतु कहीं कहीं दो विघ्न आ जाते हैं, कहीं कहीं सामना करने की शक्ति नहीं है, स्नेही रूप बने हैं परंतु शक्ति रूप नहीं बने हैं, आराम पसंद बने हैं, अलबेलापन है, दो विघ्न है, और उनमें देह की प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं फंसे हैं। लौकिक प्रवृत्ति से तो ऊपर उठ गए त्यागी आत्माएं, परंतु कहां फंसी है? देह की प्रवृत्ति में, देह के भान की प्रवृत्ति में। और उसका एक रूप बाबा ने बताया, मेरी नेचर। तो त्यागी आत्मा कहां फंसी है? मेरी नेचर, लौकिक प्रवृत्ति में फंसी है, देह की प्रवृत्ति में फंसी है। सोचती है, समझती है, परंतु करने की हिम्मत नहीं है। यह है त्यागी आत्मा की परिभाषा। अधिकारी बन गए परंतु संघर्ष है, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने संपर्क छोड़ दिया परंतु संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है, पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, पुराने संबंध, इससे अभी भी संघर्ष है, युद्ध है, बैटल है, क्योंकि वो संस्कार फिर वापस आता है। किसी एक क्लास में हमने ऐसे 21 प्रकार के संस्कार गिनाए थे, हद के संस्कार, हद की प्रवृत्ति, देह भान के संस्कार। पहला, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, स्वयं को छोटा समझना, ये एक संस्कार है कई आत्माओं में। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर स्वयं को और छोटा समझते हैं, दूसरा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम समझते हैं, न्यून गंडता, हीन भावना, हीन ग्रंथि। भगवान कह रहा है तुम महान आत्माएं हो, परंतु ये हम तक नहीं पहुंच रहा है, ठुकरा रहे हैं उसको, क्योंकि अवचेतन में, सबकॉन्शियस में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाई हुई है, जिसका बीज शायद बचपन में हो, स्कूल के दिनों से। सभी हमसे आगे निकल रहे हैं, भाई बहन हमसे आगे निकल रहे हैं, हम सबसे नीचे रहे हैं, सबको प्राइज मिल रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में, हमें आज तक नहीं मिला। सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे, हमको हमेशा दो अटेम्प्ट लगे। बचपन का बीज व्यक्ति ज्ञान में आ गया, फिर भी बीज है, अब उसने रूप बदला है। पहला, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें हमने एक निमोनिक बनाया था, इफ गॉड फाइंड्स सच्ची गोपीज। 21 शब्द है, एक एक शब्द पर एक एक संस्कार है। सबसे पहले आई अर्थात इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा नेचर है एफ, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। त्यागी अर्थात जो हद के संस्कारों में फंसे हुए हैं, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, दूसरों के दोष देखना। किसी ने कितना भी अच्छा किया हो परंतु जो इसमें मास्टर है, स्पेशल ट्रेनिंग जिन्होंने ली है, किसमें? छिद्रान्वेषण, हिंदी में कहते हैं छिद्रान्वेषण, दोष देखने की ट्रेनिंग। दिखी जाता है कहीं ना कहीं, किसी ने कितनी भी सफलता पाई हो परंतु उसका क्या दोष है वो देखना, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एफ। जी गिल्ट कॉम्प्लेक्स अपराध भाव, जीवन में कोई पाप हुआ है, कोई अपराध हुआ है, कोई बड़ी श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, उसका एक अपराध भाव है, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, ग्लानी आत्मग्लानी का भाव है, मुरली सुन रहे अमृत वेला कर रहे परंतु आत्मग्लानी है, किसी से बता भी नहीं सकते, बाबा को बता दिया परंतु उसके बाद भी वो भाव वैसा ही है, गिल्ट कॉम्प्लेक्स अपराध भाव, उस पर काम नहीं किया है। जो भी नेचर से हम गिना रहे हैं उसकी विधि है छूटने की, उनको जान लेना, उनको जानना ही उनसे मुक्ति है, संपूर्ण रूप से उनको जान लेना तो वो नहीं ठहर पाएंगे, अभी वो अस्पष्ट है, धुंधले से है। ओ ओवर थिंकिंग नेचर, कोई भी बात हो गई सोच ही रहे, दिन रात सोच रहे, उस बात को बीते कितने दिन हो गए, बाकी सब भूल गए, हम नहीं भूले, एक साल हो गया, 10 साल हो गया, उसने हमसे ऐसा ही कहा था, उसने मेरा अपमान किया था। ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी जीवन में घटनाएं हो रही है, पकड़ लिया है उनको और सोच रहे हैं उनके बारे में दिन रात, ओवरथिंकिंग। डी डिस्टर्बिंग नेचर, दूसरों को परेशान करने की नेचर, जब तक 2-3 को परेशान नहीं करेंगे रात में नींद नहीं आती है, जहां जाएंगे 2-3 को व्यंग बांध नहीं छोड़ेंगे, 2-3 कमेंट्स, टिका टिप्पणी रिमार्क, तब तक सुकून नहीं मिलता है। यहां पर एफ फियरफुल नेचर, भय है, कुछ हो ना जाए, ऐसा हो गया तो, अभी कहीं पर हमने भय की चर्चा की थी, और कुछ कुछ अज्ञात से भय है, कौन से भय है पता नहीं परंतु है, बहुत परेशान करते हैं, प्रतिष्ठा खोने का भय, अपमानित होने का भय, आरोप लगाने का भय किसी के हम पर, बहुत सारे भय, अपने भय को देखना है, किस चीज से मुझे भय है, कॉकरोच, चिपकली से चालू होता है तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म तक, आए इंपल्सिव नेचर, इंपल्सिव अर्थात बिना सोचे समझे तुरंत एक्ट करना, तुरंत कुछ करना, तुरंत बोल देना, वो एक नेचर। एन में इंग्लिश में एक शब्द है नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म अर्थात ग्रीक में एक व्यक्ति था, वो अपनी ही परछाई के साथ प्रेम में पड़ गया था, स्वयं के प्रति ही इतना प्रेम, सब कुछ मेरे प्रति हो, आत्म प्रेम, नार्सिसिस्ट नेचर, मेरी ही महिमा हो, जहां हमारी महिमा नहीं हो हम वहां नहीं जाएंगे, दूसरों की महिमा हो रही है हम क्यों जाए, जब हमारी होगी तो ही हम जाएंगे, आत्म प्रेम, मैंने क्या क्या किया, मैं कहां कहां गया, इसी की चर्चा, आत्म प्रेम। फिर से डी एफ आई एन डी डिपेंडेंट नेचर, हर चीज में दूसरों पर निर्भर है, अधीन है, कोई चाहिए पुरुषार्थ के लिए भी कोई चाहिए, दो शब्द है, एक है चिंतन पार्टनर और एक है शेयरिंग पार्टनर, सीपी और एसपी, दोनों ही बाबा को बना दो, चिंतन भी उसी के साथ और शेयरिंग भी उसी के साथ, फिर किसी की आवश्यकता नहीं है संसार की कि कोई चाहिए जिसको एसएमएस करे और अपने मन की सारी स्थिति लंबे चौड़े मैसेज से बताए और ईमेल से बताए और फिर उधर से मैसेज ना आए तो बेचैनी और इंतजार, आजा आजा आएगा आएगा, क्या व्हाट्सएप मैसेज इधर से भेजा है पर कुछ आया नहीं उधर से, और आया तो अतृप्ति क्योंकि जैसा चाहते थे वैसा नहीं आया, घोर निराशा। इसके लिए दोस्ती निभाई, हिमालयन डिसअपॉइंटमेंट। डिपेंडेंसी, निराधार हो जाओ। एस, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, एस सेल्फ विक्टिमाइजेशन, हर चीज में स्वयं को दोषी ठहराना, कईयों की ये आदत है, ये हुआ मेरी वजह से हुआ, ये असफलता हुई मेरी वजह से हुई, मैं जिम्मेवार हूं, खुद ही को टारगेट बनाना, खुद ही को विक्टिम बना देना, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। एस, अगला एस सच्ची, एस सस्पिशियस नेचर, हर चीज में संशय, जो भी दिख रहा है संशय, सस्पिशन, डाउट है हर चीज में, डाउट जीवन की छोटी छोटी बातों में, डाउट, संकल्प ले लिया है पूरा होगा कि नहीं पता नहीं, यहां से लेकर तो दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो पहले से ही शक था क्योंकि मैं जब गया तो एकदम चुप हो गए दोनों, ए अजम्प्टिव नेचर, अनुमान लगाना, एक है सस्पिशन वो थोड़ा गहरा है, दूसरा है अनुमान, ऐसा हो सकता है, ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं मेरे विरुद्ध, षड्यंत्र चल रहा है, सब लोग मेरे विरुद्ध है, सब मुझे ही कहते हैं और कहेंगे, पहले से ही अनुमान लगा रखा है, अजम्प्टिव। उसके बाद सी कंफ्यूजिंग नेचर, हर चीज में कंफ्यूजन है, मधुबन जाए या ना जाए, इस टर्न में जाए या उस टर्न में जाए, आज सेंटर जाए या ना जाए, मुरली घर पे पड़े या सेंटर पर जाए, सेवा करने जाना है नहीं जाना है, बहन जी ने बुलाया पर जाए या ना जाए, छोटी छोटी बातों से लेकर तो हर चीज में क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी जीवन में। अमृत वेला कल जल्दी उठूं या लेट उठूं, अगला सी एस ए डबल सी क्रिटिसाइजिंग नेचर, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, विरोध करना, अपोज करना हर चीज में, चाहे कितना भी कोई पॉजिटिव हो परंतु क्रिटिसाइज करना। एच हॉटी नेचर, घमंडी, अहंकारी, अगला आए फिर से आए, एक तो इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स बताया, एक इंपल्सिव बताया, और अगला आए इंसिस्टेंट नेचर, जिद करने का स्वभाव, हर चीज के लिए जिद करना, जो चीज नहीं मिली वो चाहिए, क्या इनमें से कोई भी स्वभाव हमारे अंदर तो नहीं, यदि है तो त्यागी अर्थात इनमें फंसने वाले जी। अगला जी गॉसिप्स, जो बोल दिया उधर भी गॉसिप्स करना, झरमुई झगमुई, ओ ओवर सेंसिटिव नेचर, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्वभाव, छुई मुई, किसी ने कुछ बोल दिया उदास, किसी ने कुछ बोल दिया आंसू, पी पेसिमिस्टिक नेचर, निगेटिव ट्रेंड, निगेटिव पर्सनैलिटी, हर चीज के बारे में निगेटिव सोचना, हर चीज के बारे में निगेटिव सोचना, जो भी हो रहा है उसको निगेटिव दृष्टिकोण, नकारात्मक भाव, विधायक भाव नहीं है, नकार है, एफर्मेशन नहीं है, लाइफ एफर्मेशन नहीं है, लाइफ निगेशन है। जीवन में ये परिस्थितियां आई, उनसे क्या नुकसान हुआ, बस इसी की चिंतन, क्या फायदा हुआ नहीं। आए और एक आए है, ये आए क्या हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए ऐसा नेचर आए से। इंग्लिश में बताऊं क्या, इरिटेटिंग नेचर, हर चीज में चिड़चिड़ापन, हर चीज में चिड़चिड़ापन, क्या कहा, क्या कहा, आए इरिटेटिंग, और लास्ट में है एस, एस अर्थात स्लैक, स्लैक अर्थात अलबेलापन, स्लैकनेस, लेजीनेस, केयरलेसनेस। तो ऐसे ये 21 प्रकार के नेचर, इनमें से यदि मुझ में कोई है तो उस पर हमें काम करना है, जरूरत पड़ी तो किसी की मदद लेनी है। सूक्ष्म में कहीं भी कोई भी स्वभाव है, ये सारे हद के स्वभाव है, ये सारे स्वभाव में देह की प्रवृत्ति है, देहभान के स्वभाव है, मेरा नेचर। इसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, परिवर्तन हुए है, इसके लिए ये केवल क्या है, त्यागी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी आत्माओं की महात्यागी, और सेकेंड थर्ड टाइप की प्रवृत्ति कौन सी है, सेवा की प्रवृत्ति, ये सबसे सूक्ष्म है। यहां पर लौकिक संबंधियों से कोई संबंध नहीं, लौकिक कार्यों से कोई संबंध नहीं, देह की प्रवृत्ति से लगभग छूट चुके हैं, देहभान है नहीं, शक्तिशाली बन गए हैं, ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध हो गए हैं, सेवाधारियों में विशेष VIP है, सब मेरी मांगनी करते हैं, बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्द, मैं तो न्यारा हूं परंतु ये प्यारा बनाते हैं, ये कहते हैं कि ये सेवा आप ही कर सकते हो, शक्तिशाली बने हैं, पहले जो थे वो शक्तिशाली नहीं थे, स्नेह रूप थे, ये जो है ये हिम्मतवान भी है, पहले वाले हिम्मतवान नहीं थे, ये हिम्मत वाले भी है, स्नेह भी है, शक्ति भी है, स्नेही भी है, सहयोगी भी है, सब कुछ है, परंतु उल्टा नशा भी है। और यह कौन सी सोने की जंजीरें हैं, मैं की और मेरा की, ये सेवा केवल हम ही कर सकते हैं। यदि मेरा ओपिनियन नहीं लेना है तो मैं जा रहा हूं, करो तुम जो करना है, देखता हूं कैसे करते हो। सेवाओं में मैं, सेवाओं में टकराव, सेवाओं में अहंकार, ज्ञान अज्ञान अंधकार है, परंतु ज्ञान महाअंधकार है, यदि उस ज्ञान में अहंकार आ जाए तो। भोग अंधकार है, और योग महाअंधकार है, यदि उस योग का ही घमंड हो जाए तो मैं योगी तू आत्मा हूं, मैं अच्छा योगी हूं, मैं अच्छा ज्ञानी हूं, बाबा के महावाक्य है, इसी का अहंकार। सोने की जंजीरें, सेवाएं कर रहे परंतु शायद ये सेवाओं का विस्तार मेरे मैं का विस्तार है, शायद मैं प्रसिद्ध होना चाहता है, जो मैं दबा था इतने साल अचानक प्रकट होना चाहता है। किसको देखा, बाप को देखा या आपको देखा? यदि आपको देखा और बाप को क्या बना दिया, परम धाम निवासी बना दिया, तो क्या ये सेवा कहेंगे? खुद में फंसा दिया, बाप में नहीं फंसाया, मैं है और मेरा है, एक तो मैं और दूसरा मेरा, मेरी सेवा, मेरा अधिकार, पद का अहंकार। महाभारत में एक दृश्य है, द्रौपदी स्वयंवर, जिसमें अर्जुन वहां आता है, श्री कृष्ण भी वहां है, मत्स्य भेदन करना है, नीचे पानी है, ऊपर मछली है जो घूम रही है गोल गोल, उसकी आंख पर तीर मारना है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जाओ, एकाग्र करो बुद्धि को, देखो पानी में और एकाग्रता से ऊपर तीर चलाओ नीचे देखकर। अर्जुन कहता है मैं ही सब कुछ करूंगा तो आप क्या करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। वो कहता है अर्जुन ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता और वो केवल आप ही कर सकते हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं उस पानी को स्थिर कर दूंगा। मैं उस पानी को स्थिर कर दूंगा जो तुम कभी नहीं कर सकते। यदि वो हट जाए जीवन से तो हम गिर जाएंगे। ये उसी की दया कृपा अनुकंपा है, भक्ति के शब्द है सभी, परंतु उस बाप की ही दया है, उस बाप की ही कृपा है। कोमल चित अतिदीन दयाला बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, ऐसा वो बिना कारण के दया करने वाला, उसकी कृपा है तब तो यहां बैठे हैं ना आज, तब तो मधुबन में आए। कितनों ने आने का सोचा था, पहुंच नहीं पाए, हम पहुंचे। क्या अपने पुरुषार्थ से पहुंचे? उसकी कृपा हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबकी हुई। इसलिए कैसा मैं होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। धाय विल शाल बिडन, तेरी इच्छा मैं नहीं तू। कैसा अहंकार, वो कर रहा है, उसी की कृपा दया आशीर्वाद अनुकंपा है। बार बार यह स्मरण रखना तो वो जो अहंकार है वो नहीं उठेगा। सर्वंश त्यागी अर्थात ये जो प्रसिद्धि और ये जो नाम और ये जो सम्मान, वो भी उसी का दिया है, और जिसने दिया है वो चाहे तो ले भी सकता है। एक सूफी गीत है बहुत सुंदर, सुना होगा सभी ने, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। सूफी संत कहता है हे प्रभु, राजी तेरी रजा में मुझे क्या एतराज है? तेरे पास बिजलियां है, कब तेरी बिजली गिर जाएगी, और मेरा ये जो भवन है कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। इसके लिए मैं नहीं वो। चेक करना है सेवा के विस्तार में कहीं फंस तो नहीं गए, सेवाओं के जंगल में कहीं ज्ञान योग नष्ट तो नहीं हो गया है। महायोगी बन गए, महाज्ञानी बन गए, श्रेष्ठ सेवाधारी बन गए, परंतु महादानी नहीं बने हैं। जो प्राप्तियां मिली है वो महादानी बनकर दान नहीं कर रहे हैं, अर्थात सर्वंश त्यागी नहीं, अर्थात सर्वत्यागी नहीं। जो मिला है वो भी उसी का दिया है। इसके लिए इस बात को नहीं भूलना, जो भी हमारे पास है सब कुछ उसका है। एक लास्ट कहानी सुनाते हैं, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, विदेश में बहुत प्रसिद्ध। एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना अच्छा है, इतना सुंदर उसका आचरण है, इतना सबका कल्याण करता है और सबको इतना प्रिय है कि एक बार स्वर्ग से फरिश्ते उतर आते हैं धरती पर और उसको कहते हैं कि हमें तुम्हें वरदान देना है, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम मांगो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। क्या हम तुम्हें ऐसा वरदान दे दे कि तुम जिसे भी हाथ लगाओगे वो यदि बीमार है वो ठीक हो जाए। हम तुम्हें ऐसा वरदान दे दे कि तुम जहां से जाओ वहां पर यदि पतझड़ है हरियाली हो जाए, यदि संसार की भटकती हुई आत्माएं तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उन्हें ईश्वर का राह बता दो। वो कहता है नहीं। फिर से वो कहते हैं कि यदि हम तुम्हें ये वरदान दे दे कि किसी पर किसी को तुम हाथ लगा दो वो ठीक हो जाए। वो कहता है नहीं, ये फरिश्तों का काम है। फिर से वो कहते हैं कि ऐसी शक्ति हम तुमको दे देंगे कि तुम जहां से गुजरोगे जो ये बताया हरियाली हो जाए। वो कहता है नहीं, ये भगवान का काम है। फिर से उसको कहते हैं अगर भटकती हुई आत्माएं तुम्हारे पास आ जाए और तुमको हम ये शक्ति दे दे कि तुम उन्हें राह दिखा दो। तो वो कहता है कि नहीं, अगर मैं अगर दिखाऊं तो शायद मुझसे भगवान से वो बेमुख हो जाएंगे और मुझ में ही फंस जाएंगे। फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हें क्या दे, वरदान तो तुम्हें लेना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो जबरदस्ती देंगे। तो वो कहता है यदि तुम्हें देना ही है तो एक बात कर दो, मैं अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कर्म करूं, इतने पुण्य कर्म करूं पर मुझे पता ना चले। तो सारे फरिश्ते हैरान हो जाते क्या किया जाए। कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी रुको। फरिश्ते मीटिंग करते हैं, अब क्या वरदान दे इसको, ऐसा कैसा वरदान दिया जा सकता है। वो मीटिंग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके बाद तुम जहां से चलोगे तुम्हारी जो परछाई है वो जिस पर गिरेगी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये परछाई अगर तुम सूखे झरनों के पास से गुजरोगे वहां से कलकल निनाद करते पानी बहने लगेगा, खेतों से गुजरोगे जो बंजर जमीन है वहां पर लहलाती फसल उगेगी, भटकते हुए लोग तुम्हारी परछाई को केवल स्पर्श करेंगे और वो उनको राह मिल जाएगी, परंतु तुम्हें पता नहीं चलेगा और उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। विदेश में भी आज भी उस व्यक्ति को होली शैडो के नाम से जाना जाता है। वो व्यक्ति कौन है अभी तक नहीं पता, परंतु कहानी का नाम है होली शैडो। कि हम पुण्य कर रहे हैं ये हमें भी ना पता चले, किसका फायदा हो रहा हो उन्हें भी ये ना पता चले कि हमने ये किया। ये कहना भी कि मैं निमित्त हूं, इसमें भी शायद अहंकार हो सकता है क्योंकि मैं ही निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। हम ये भी शायद कह रहे हैं कि दूसरों को नहीं बनाया, मुझे बनाया। अपने अहंकार की सूक्ष्म में पूर्ति हो रही है वहां पर भी। ये वाक्य भी जो है इससे भी परे। आज की मुरली में स्लोगन क्या था, सब सहयोग कब करेंगे नमन करते हुए, कब करेंगे नम्र बनोगे तब। ऐसी होली शैडो विश्व का कल्याण करे, पुण्य कर्म करे, परंतु हमें पता नहीं कि हमने क्या किया। उसकी लिस्ट नहीं है, उसके फोटो नहीं सेव करके रखे भेजने के लिए। गुप्त ब्रह्मा बाप की ऐसी ही स्थिति और ऐसी ही सेवा थी, मम्मा की ऐसी ही गुप्त सेवा थी। तो ऐसे मैं और मेरा के जंजीरों से मुक्त होना, ऐसे बाप के सर्वंश त्यागी बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान त्याग के भाग्य का भी महादान करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ फरमान बरदार वफादार फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को और ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।